नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी अलग जरूर हो गए हैं, मगर उनके बीच की कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राखी सावंत को 4 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस फैसले से आदिल बहुत खुश हैं। राखी के अरेस्ट होने वाली खबर पर वीडियो शेयर करके आदिल दुर्रानी ने खुशी जाहिर की है। कथित तौर पर राखी सावंत की जमानत याचिका पर सुनवाई उनके सरेंडर होने के बाद होगी। राखी सावंत इस वक्त दुबई में हैं। राखी सावंत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो आदिल दुर्रानी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। खुशी की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राखी की बेल रिजेक्ट कर दी है और ऑर्डर पास किया है कि 4 हफ्ते के अंदर आपको आकर सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। बीजेपी ने लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया है। इस बार बीजेपी ने लद्दाख लोकसभा से ताशी गलायसन को चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 में पहली बार लद्दाख से चुनकर संसद में पहुंचे जामयांग सेरिंग नामग्याल ने आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान इस अंदाज में अपनी बात रखी थी कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके मुरीद हो गए थे। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। पार्टी ने नामग्याल के स्थान पर ताशी गयालसन को लद्दाख से उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान अपने चुनाव क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का स्वागत करते हुए नामग्याल ने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा था कि इन तीनों पार्टियों ने न केवल लद्दाख बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के हितों को भी नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव से पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले की सुनवाई करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वो पतंजलि पर उंगली उठा रहा है, जबकि 4 उंगलियां आप पर भी उठ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर भी महंगी और गैर जरूरी दवाओं का प्रचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IMA को अपनी तरफ भी देखना चाहिए। एलोपैथी के डॉक्टर लोगों को गैर जरूरी और काफ़ी महंगी दवाएं लिखते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी अनैतिक तौर तरीके अपनाए जाने की शिकायत मिल रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के अलावा दूसरी FMCG कंपनियों का भी जिक्र किया और कहा कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत दावे करती हैं। नोएडा गाजियाबाद स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के कारण यहां के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी, यानी कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वो घर से ही ऑनलाइन मोड पर क्लास अटेंड करेंगे। ये फैसला लोकसभा चुनाव के कारण लिया गया है। बता दें कि गाजियाबाद के कई स्कूलों में आज से ही ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई शुरू हो गई है। वहीं नोएडा के स्कूलों में कल परसों यानी 24 और 25 अप्रैल को ऑनलाइन मोड में क्लास चलेंगे। दरअसल गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। कई स्कूलों को मतदान केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। वहीं स्कूल बसों का भी मंगलवार शाम से प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। स्कूलों को पोलिंग बूथ के रूप में बदल दिया गया है। ऐसे में छात्रों के लिए स्कूल में क्लास की सुविधा नहीं हो पाएगी। इसी कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक और कारनामा कर दिया है, लेकिन इस बार भारत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर कंपनी ने नया रिकॉर्ड बना डाला है। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में अपनी धाक जमाने के बाद अब मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली जियो ने डेटा खपत के मामले में चीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल को पछाड़ दिया है। रिलायंस जियो अब डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व की नंबर एक कंपनी बन गई है। पिछले तिमाही में कंपनी ने कुल डेटा ट्रैफिक 40.0 exabyte रजिस्टर किया। इस ट्रैफिक के साथ ही जियो ने अब तक दुनिया की नंबर एक कंपनी रही चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए नंबर एक का खिताब हासिल कर लिया। चाइना मोबाइल अब डेटा ट्रैफिक में नंबर दो की पोजीशन पर लुढ़क गई है। चीन की कंपनी की डेटा खपत उसके नेटवर्क पर पिछली तिमाही में 40 exabyte से कम रही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।